नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं कि आज का ये कार्यक्रम सुनने के लिए आप सब तैयार हैं। आज से हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से एस्तर नामक पुस्तक का अध्ययन आरंभ करेंगे। इस पुस्तक का मुख्य विषय है यहूदी प्रजा का छुटकारा। श्रोताओ, एस्तर की पुस्तक इस बात को प्रमाणित करती है कि परमेश्वर के लोग उसके हाथ में हैं। इस पुस्तक में हम विस्तार पूर्वक देखेंगे कि किस प्रकार एस्तर रानी ने अपनी जाति के लोगों को बचाया। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
मन का दीप जला, जीवन दीप जला, ख्वाबों में जो खोया है जा जरा मत वाले, ख्वाबों में जो खोया है जाग जरा मत वाले। मन का दीप जला, जीवन दीप जला, ख्वाबों में जो खोया है जाग जरा मत वाले, ख्वाबों में जो खोया है जाग जरा मत वाले। सच बतला दे तेरे मन में रात ये कैसी छाई, सच बतला दे तेरे मन में रात ये कैसी छाई, अच्छा नहीं है देख संभल जा यीशु से है जुदाई, यीशु को अपना, यीशु को अपना, ख्वाबों में जो खोया है जाग जरा मत वाले, ख्वाबों में जो खोया है जाग जरा मत वाले। ख्वाब सुनहरा इसमें जो फंस जाए, ये दुनिया है ख्वाब सुनहरा इसमें जो फंस जाए, रोए तड़पे चैन न पाए घुल घुल के मर जाए, मन का मैल धुला, मन का मैल धुला, ख्वाबों में जो खोया है जाग जरा मत वाले, ख्वाबों में जो खोया है जाग जरा मत वाले।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल हूं और मुझे विश्वास है कि आप सब भी कुशल पूर्वक हैं और परमेश्वर की निकटता में रह करके आनंदित हैं, और प्रतिदिन की तरह आज भी फिर से एक बार परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मेरे मित्रों, मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं या सुन रहे हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम आज पुराने नियम की पुस्तक में से एस्तेर नामक पुस्तक का अध्ययन करना चाहते हैं, और इसमें हम देखेंगे एस्तेर की पुस्तक का परिचय, उसके बाद अध्याय 1-3 तक का अध्ययन। तो इससे पहले कि हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से सहायता मांगे। हमारे दयालु और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित और सामर्थी वचन के लिए, आपके प्रेम, दया और करुणा के लिए, जिसे आप हमारे जीवन में बड़ी दया के द्वारा देते हैं। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, मनन चिंतन करते हैं और विचार विमर्श करते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हम सबको अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ की परिपूर्णता प्रदान करें, ताकि आज हम जो कुछ भी सुनते हैं, निश्चित रूप से ये वचन हम में से प्रत्येक के जीवन में कार्यरत होने पाए, उसके अनुसार से हम चल सकें, एस्तेर की पुस्तक के द्वारा से हम आत्मिक बातों को सीखने पाए। इस समय हमारी विनती उन भाई बहनों के लिए है जो बीमार हैं, निराश हैं, चिंतित और परेशान हैं। पिता परमेश्वर, उन पर भी अपनी अनुग्रह प्रदान करें, ताकि वे भी अपने जीवन में आपकी आशीषों को प्राप्त कर सकें। फिर से एक बार इस समय को हम सबको आपके हाथ में देते हैं। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, यह तो निश्चय नहीं कि इस पुस्तक का लेखक कौन है, अर्थात एस्तेर की पुस्तक का, परंतु अति संभव है कि मोर्दकै ने यह पुस्तक लिखी है, जिसे हम देख सकते हैं एस्तेर की पुस्तक 9 उसके 29 पद में। एस्तेर 4 उसके 14 पद में लिखा है, जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट हो जाएगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। ध्यान दीजिए, एक प्रकार से देखा जाए तो एस्तेर की पुस्तक बाइबल की एक विशेष पुस्तक है, क्योंकि इसमें कहीं भी परमेश्वर का नाम नहीं है, न ही इसमें परमेश्वर के लिए कोई सर्वनाम या उपनाम आया है, जबकि अन्य जाति राजा का नाम 192 बार आया है। इसमें प्रार्थना का कहीं उल्लेख है? संभवतः, क्योंकि इसमें परमेश्वर का स्थान नहीं है। एक बात और भी है, नए नियम में एस्तेर की पुस्तक से कहीं भी संदर्भ नहीं दिया गया है। संयोगवश इसका संदर्भ नए नियम में नहीं पाया जाता है। अन्य जातियों के अंधविश्वास और विशेष दिन का उल्लेख तो अवश्य ही किया गया है। इसमें प्राचीन संसार पर राज्य करने वाले एक अन्य जाति सम्राट के राजा महान का दृश्य दर्शाया गया है। अतः यह पुस्तक वास्तव में एक असामान्य पुस्तक है। इस पुस्तक के असामान्य होने का एक और कारण है, इसका शीर्षक एक स्त्री के नाम पर रखा गया है। वास्तव में देखा जाए तो बाइबल में 2 पुस्तकें स्त्रियों के नाम पर हैं। कुछ विचारक यूहन्ना के पत्रों को भी इसी वर्ग में गिनते हैं, परंतु मैं उनके विचार से सहमत नहीं हूँ। रूत और एस्तेर ही बाइबल की 2 पुस्तकें हैं जिनको स्त्रियों के नाम पर लिखा गया है। मैंने इन दोनों पुस्तकों पर कुछ टीकाओं को देखा है। रूत की पुस्तक को मुक्ति की प्रेम कथा कहा गया है और एस्तेर की पुस्तक को ईश्वरीय विधान की रोमांचकारी घटना कहा गया है, क्योंकि मुक्ति या उद्धार एक प्रेम कथा है और संपूर्ण सृष्टि का अपनी इच्छा के अनुसार नियंत्रण करना ईश्वरीय विधान है। मेरे मित्रों, इससे पूर्व की परमेश्वर इसराइल वंशियों को प्रतिज्ञा के देश में लाया, उसने उनके इतिहास की रूपरेखा तैयार की, जिसका विवरण व्यवस्था की पुस्तक में है। उसने बेबीलोन की बंधुआई का पूर्व उल्लेख किया था और रोम द्वारा यरूशलेम के विनाश की भविष्यवाणी भी की थी कि नागरिक बंदी बनाकर ले जाएंगे, और ठीक ऐसा ही हुआ। परंतु व्यवस्था विवरण की पुस्तक 31 उसके 18 पद में परमेश्वर कहता है, उस समय में सब बुराइयों के कारण जो ये पराये देवताओं की ओर फिर कर करेंगे, निसंदेह उनसे अपना मुंह छिपा लूंगा। ध्यान दीजिए, एस्तेर की पुस्तक में परमेश्वर ने अपना मुंह उनसे छिपा लिया था, परंतु हम कह सकते हैं कि परमेश्वर छिप कर भी अपनों की चौकसी करता है। अतः एस्तेर की पुस्तक ऐसे जन समूह का उल्लेख करती है जो परमेश्वर की इच्छा के बाहर है। बेबीलोन की बंधुआई के 70 वर्षों के पश्चात जब कुस्रो ने यहूदियों के स्वदेश लौटने की अनुमति की घोषणा की थी, तब सब यहूदी स्वदेश नहीं लौटे। लौटने वाले केवल 60,000 से कम थे, जिसका लेखा एज्रा और नहमिया की पुस्तक में है। वरन हगै और जकरयाह भी उसी समय के भविष्यद्वक्ता हैं। अब वह बड़ा समूह जो स्वदेश नहीं लौटा था, उनके बारे में क्या कहें? आज परिस्थितियां ठीक वैसी ही हैं, परंतु हम इसराइल पर उंगली उठाते हैं। लगभग 20 लाख यहूदी अब तक स्वदेश लौट आए हैं, परंतु 160 लाख अब भी विश्व में फैले हुए हैं। अतः हम देखते हैं कि बहुसंख्यक यहूदी अभी अपने देश से बाहर हैं। मेरे कहने का अर्थ है कि उस युग में यहूदियों की यही स्थिति थी। कुस्रो की आज्ञा के उपरांत भी लाखों इसराइली विदेश में ही रह रहे थे। उन्हें स्वदेश लौटना चाहिए था, क्योंकि यह परमेश्वर की आज्ञा थी। अब वे परमेश्वर की इच्छा में नहीं है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या हमारे पास इन यहूदियों का लेखा है जो स्वदेश नहीं लौटे थे? जी हाँ, एस्तेर की पुस्तक उनका लेखा है। यह उनके इतिहास का एक ही पृष्ठ है, उनके अनुभव की एक ही घटना है, उनके विशाल लेख का एक रेशा है। इस कारण एस्तेर की यह छोटी सी पुस्तक अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। इस पुस्तक में हमें परमेश्वर का नया रूप देखने को मिलता है। यद्यपि वे परमेश्वर की इच्छा में नहीं थे, परमेश्वर उन्हें नियंत्रित कर रहा था। कैसे? अपने विधान के द्वारा। परमेश्वर का यह विधान क्या है? आज जितनी भी धर्म शिक्षाएं या सिद्धांत हैं, वे सब पुराने नियम की कुछ पुस्तकों में से हैं। उद्धार की शिक्षा निर्गमन की पुस्तक में पाई जाती है। उद्धार में प्रेम का परिप्रेक्ष्य रूत की पुस्तक में प्रकट है। अय्यूब की पुस्तक मन फिराव का ज्ञान प्रदान करती है। योना की पुस्तक में पुनरुत्थान का प्रकाशन प्रदान किया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे मसीही विश्वास में महान सिद्धांत पुराने नियम की कुछ पुस्तकों में पाए जाते हैं। अब हमारे सामने एस्तेर की पुस्तक है। इसमें क्या पाया जाता है? एस्तेर की पुस्तक में परमेश्वर का विधान प्रकट है। इस पुस्तक में जिन यहूदियों का उल्लेख है, वे परमेश्वर की इच्छा से बाहर परदेश में निवास कर रहे हैं। उन्होंने स्वदेश लौटने की परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया था। उन्होंने परमेश्वर की अवज्ञा ही नहीं की, वे परमेश्वर को भूल भी गए थे। वे परमेश्वर से अलग हो गए थे। वे कठिन समय में परमेश्वर को पुकारना नहीं जानते थे। जब वे बेबीलोन आए, तब कहते थे, भजन संहिता 137 उसके 4 और 6 पद में, हम यहोवा के गीत को पराय देश में कैसे गाएं? जी हाँ, वे गा नहीं पाते थे। वे यरूशलेम को स्मरण करके रोते थे, परंतु अब वे यरूशलेम को भूल गए थे। और सच तो यह था कि यरूशलेम मलबे का ढेर हो गया था, खंडहर हो गया था। अतः वे अब वहां जाना नहीं चाहते थे। उन्होंने वाचा बांधी थी, यदि मैं तुझे स्मरण न रखूं, यदि मैं यरूशलेम को अपने सब आनंद से श्रेष्ठ न जानूं, तो मेरी जीभ तालू से चिपक जाए। परंतु वे सब भूल गए। इस पुस्तक में उनकी जीभ चूक बन गई है। वे परमेश्वर की स्तुति नहीं करते हैं, वे प्रार्थना भी नहीं करते हैं। इस प्रकार यह पुस्तक एक असामान्य पुस्तक है। अब परमेश्वर क्या करेगा? जी हाँ, परमेश्वर उन्हें नहीं भूला है। यदि उन्होंने परमेश्वर को भुला दिया है, तो वह उनकी अगुवाई कैसे करेगा? परमेश्वर अपने विधान को क्रियाशील करेगा। एस्तेर की पुस्तक ईश्वरीय विधान का प्रकाशन करती है। ईश्वरीय विधान क्या है? मुझे क्षमा करना, मैं पल भर के लिए धर्म विज्ञान के विषय में आता हूँ। ईश्वरीय विधान परमेश्वर द्वारा सबका नियंत्रण करना है। जीवित निर्जीव, देखी अनदेखी, कुछ बुरी, सबका एक सुयोग्य उद्देश्य के निमित्त परमेश्वर द्वारा नियंत्रण। इसका अर्थ है कि अंततः उसकी ही इच्छा पूरी होती है। दूसरे शब्दों में भजनकार इसे व्यक्त करता है भजन संहिता 103 उसके 19 में, उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। तब हम देखते हैं इफिसियों की पत्री 1 अध्याय उसके 11 पद में पौलुस कहता है, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है। मेरे मित्रों, हमारा परमेश्वर संपूर्ण जगत का नियंत्रण करता है, जबकि कुछ लोगों के विचार में जगत का नियंत्रण उसके हाथ से निकल गया है। इमर्सन का कहना गलत है, कहता है परिस्थितियां काठी पर सवार हैं और मनुष्य की सवारी कर रही हैं। परिस्थितियां मनुष्य पर सवार हैं परंतु काठी पर नहीं बैठी हैं। काठी पर तो परमेश्वर बैठा है। जगत वरन मनुष्य के संबंध में परमेश्वर के विधान को उचित रूप से समझने के लिए हमें तीन शब्दों को अंतर्ग्रहण करना आवश्यक है। पहला शब्द है सृजन कार्य। सृजन कार्य से हम समझते हैं कि परमेश्वर ने अपने वचन द्वारा जगत की रचना की। क्या आपके पास इससे अधिक उत्तम कोई परिभाषा है? यदि है तो मैं सुनना चाहता हूँ। मैं कुछ शिक्षकों से अप्रसन्न हूँ जो विज्ञान के विषय पूरा ज्ञान न रखते हुए भी विकासवाद पर ऐसी चर्चा करते हैं जैसे वे ही एकमात्र ज्ञानी मनुष्य हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मनुष्य और ब्रह्मांड की रचना के लिए पदार्थ कहाँ से आया? पृथ्वी का आरंभ कब हुआ था? क्या पृथ्वी शून्य से उत्पन्न हुई थी? मुझे यह न बताएं कि वह तो पहले से थी, जिसका अर्थ है कि वह अनंत है। यदि आपका ब्रह्मांड अनंत है तो उसका संचालक भी अनंत होगा। हम दुविधा में हैं। ब्रह्मांड के अस्तित्व की केवल दो ही व्याख्याएं हैं। एक है कल्पना, जिसे विकासवाद का सिद्धांत उपजा है। विकासवाद से पूर्व अन्य सिद्धांत भी थे, ये सब सिद्धांत नष्ट हो जाएंगे, यह सब कल्पना है। और दूसरी व्याख्या है प्रकाशन। आप और मैं जो विश्वासी हैं, इस जगत की उत्पत्ति को विश्वास द्वारा ही अंतर ग्रहण कर पाते हैं। हमारा विश्वास है कि परमेश्वर इस जगत को अस्तित्व में लाया और यह तथ्य हमें प्रकाशन द्वारा प्राप्त होता है। रोमियो की पत्री 10 अध्याय उसके 17 पद में लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप सृष्टि को माने या विकासवाद को। जगत की उत्पत्ति की तीसरी व्याख्या नहीं है। अब दूसरा शब्द है संरक्षण, जो एक प्रभावी शब्द है। परमेश्वर के विधान द्वारा ही जगत स्थिर है, जिसे हम इब्रानियों के पत्र 1 अध्याय उसके 3 पद में पढ़ते हैं, सब वस्तुओं को अपने सामर्थ्य के वचन से संभालता है। तब कुलुसियों के पत्र 1 अध्याय उसके 17 पद में पौलुस कहता है, वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। जी हाँ, जगत को परस्पर जोड़कर रखने वाला यह गोंद कैसा है? वह क्या वस्तु है जो जगत को एक घड़ी के समान चलाती है और चंद्रमा की स्थिति का सही ज्ञान प्रदान करती है? वैज्ञानिक मंगल ग्रह की ओर एक यंत्र भेज देते हैं और उन्हें मंगल ग्रह की स्थिति का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। आप सोचते हैं कि मनुष्य द्वारा यह सब कर पाना अद्भुत कार्य है, परंतु मेरे लिए अद्भुत बात तो यह है कि ब्रह्मांड सुचारू रूप से काम कर रहा है। उसका संचालक कौन है? प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण ब्रह्मांड को चला रहा है। वह अपने वचन के सामर्थ्य से सब वस्तुओं को स्थिर रखता है। मेरे प्रियो, तीसरा शब्द है ईश्वरीय विधान। एस्तर की पुस्तक में हम इसी शब्द पर ध्यान देंगे। ईश्वरीय विधान परमेश्वर द्वारा जगत का नियंत्रण है। वह कल वरन भविष्य में अपने विधान द्वारा कार्य करता है। विधान का अर्थ है परमेश्वर का प्रावधान। आपको स्मरण होगा कि मोरिया पर्वत पर अब्राहम ने कहा था, उत्पत्ति की पुस्तक 22 अध्याय उसके 7 और 8 पद में, इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। जी हाँ, 1900 वर्ष के बाद परमेश्वर ने उसी पर्वतीय श्रृंखला पर मेमने का उपाय किया। गुलगता नामक उस पर्वतीय स्थान पर प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था। वह परमेश्वर द्वारा उपलब्ध करवाया गया मेमना था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 29 पद में लिखा है, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। परमेश्वर उपलब्ध कराता है, प्रावधान करता है, उपाय करता है। जी हाँ, ईश्वरीय विधान का अर्थ है कि परमेश्वर का हाथ मानवीय परिस्थितियों के दस्ताने में परमेश्वर का हाथ है। यदि परमेश्वर का हाथ स्थान पर न हो तो वह पीछे बैठकर नियंत्रण करता है। परिस्थितियों की नाव में अप्रत्यक्ष पतवार है। जी हाँ, रात की चौकसी में परमेश्वर नियंत्रक नाविक है। जैसा किसी ने कहा है, वह विशाल द्वार के छोटे छोटे चूल पर चलाता है। परमेश्वर ने नील नदी के तीर पर एक स्त्री का ममता भरा हृदय और एक शिशु के रोने को संयोजित किया था। जब फिरौन के पुत्री वहां स्नान करने आई थी, परमेश्वर ने शिशु मूसा को चिकोटी काटी और वह रो पड़ा। उसका रोना राजकुमारी के कानों में पड़ा और परमेश्वर ने एक जाति का भाग्य बदल देने के लिए इसका उपयोग किया। जी हाँ, यही ईश्वरीय विधान था, परमेश्वर का हाथ था। एस्तर की पुस्तक में हमें परमेश्वर के विधान का एक महान उदाहरण प्रदान करती है। यद्यपि पुस्तक में परमेश्वर का नाम नहीं है, उसके प्रत्येक पृष्ठ पर हमें परमेश्वर के विधान का प्रकाशन प्राप्त होता है। मेरे मित्रों, परमेश्वर के वचन में सांसारिक इतिहास की यह पुस्तक एक विशेष उद्देश्य के निमित्त रखी गई है। वह पुस्तक परमेश्वर के प्रावधान की अंतर्दृष्टि प्रदान करती है और इसका आरंभ अन्य जाति राज्य के नियम से आरंभ होता है और उसमें विवाहित संबंधों की कठिनाई व्यक्त है। उस राज्य में उत्पन्न यह समस्या व्यक्तिगत संबंधों की है, परंतु इसका प्रत्यक्ष प्रभाव वैश्विक है। तो आइए आप मेरे साथ एस्तर की पुस्तक एक अध्याय उसके एक पद को निकालिए। एस्तर की पुस्तक एक अध्याय उसके एक पद में लिखा है, शयर्स नामक राजा के दिनों में ये बातें हुई। यह वही शयर्स है जो 127 प्रांतों पर अर्थात हिंदुस्तान से लेकर कूश देश तक राज्य करता था। ध्यान दीजिए, यहाँ हमें सबसे पहले तो यह जान लेना है कि शयर्स का राजा का नाम नहीं, उसका पदनाम है, जिसका अर्थ है बड़ा पिता या पूज्य पिताजी। जैसे रोम के राजा को कैसर कहा जाता था, अतः फारस के इस राजा की पहचान स्पष्ट नहीं है। इस राजा की पहचान के बारे में अनेक विचार हैं। मेरे विचार में एस्तर की पुस्तक का शयर्स फारस का अर्थ क्षेत्र महान था, क्योंकि उसी के युग में फारस राज्य अपनी चरम सीमा पर था। अर्थशत्र ही वह राजा था जिसने पश्चिम क्षेत्र को जीतने का अंतिम महान प्रयास किया था। अंग्रेजी संग्रहालय से प्रकाशित एक पुस्तक में व्यक्त है कि यशाया 44 अध्याय उसके 28 और 45 अध्याय के एक पद में राजा कुसरो शयर्स और एस्तर की संतान था। अर्थशत्र का साम्राज्य भारत से कुश देश तक था और संसार के केंद्र उर्वर अर्दंदु भी उसके अधीन था। एस्तर की पुस्तक एक अध्याय उसके 2 और 3 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, उन्हीं दिनों में जब शयर्स राजा अपनी उस राजगद्दी पर विराजमान था जो शूशन नामक राजगढ़ में थी, वहां उसने अपने राज्य के 3रे वर्ष में अपने सब हाकिमों और कर्मचारियों को भोज दिया। फारस और मादे के सेनापति और प्रांत प्रांत के प्रधान और हाकिम उसके सम्मुख आ गए। मेरे प्रियो, यह भोज ऐसा महान था कि आज यदि कोई बड़े से बड़ा भोज भी दे तो इसके समक्ष नगण्य है। उसके राज्य में 127 प्रांत थे और प्रत्येक प्रांत से प्रतिनिधि मंडल उस भोज में आया था। मैं नहीं जानता कि कितने लोग थे। इस प्रकार उसके भोज में लगभग 1 से 2 हजार मनुष्य थे। हम इसे ठाट बाट का प्रदर्शन कह सकते हैं। उसका खर्च करोड़ों रुपया में होगा। संसार के इतिहास में वह एक महान घटना थी। परमेश्वर के लेखे में यह दृश्य कैसे संभव हो सकता है? उसके उपाय के निमित्त हो सकता है। जी हाँ, परमेश्वर अपनों की चौकसी में तत्पर रहता है। मेरे मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है, लेकिन हम अगले अध्ययन में देखेंगे कि इसके आगे की घटना क्या है। तब तक आप इस अध्ययन के साथ बने रहें, परमेश्वर के वचन की संगति में बढ़ते रहें। प्रभु आप सबको आशीष दें।
एक बार तो मसीहा
श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।